अनुभव इतना ही है, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए, प्रभु प्रेम से हमारे प्राण सिक्त हो गए, इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। ऐसी असीम ममता, ये कृपा नहीं तो क्या है? बाबा कहते हैं मैं कृपा नहीं करता हूं। और कल की मुरली में था, क्या था? बाप की कृपा किन पर होती है और कौन सी होती है? जो कौड़ी से हीरा बना देता है। ऐसी असीम ममता, ये कृपा नहीं तो क्या है? बिन मांगे सब दिया है, ये दया नहीं तो क्या है? जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए और इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए। न जप न दान, भक्ति ध्यान ज्ञान भी नहीं, और पालूं तुम्हें पहचान लूं विद्वान भी नहीं, बस प्रेम था, वो भी थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा, बस प्रेम था जो प्रभु मिलन से तृप्त हो गए और इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे, परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे, अरे वो सामने हो साथ में, कोई कल्पना करे, कोई कल्पना तो करे, कहां हो सकता है? एक झलक पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी लगा देते हैं, वो साथ में होगा, वो सामने होगा, कभी सोचा नहीं था, कल्पना से परे था। परमात्मा मिलेगा था ये स्वप्न से परे, वो सामने हो साथ में, कोई कल्पना करे, इतने समीप आए परम मित्र हो गए और इतनी कृपा हुई कि हम कृतकृत्य हो गए, प्रभु प्रेम से हमारे प्राण सिक्त हो गए, जीवन के महोत्सव में कर्म नृत्य हो गए और इतने समीप आए परम मित्र हो गए, परम मित्र हो गए। ताली बजा लीजिए, कोई नहीं। ये केवल मात्र हमारा अनुभव नहीं, ये अनुभव आप सबका भी है। केवल ये है कि पल पल बाबा जो हमें मदद करते हैं, हमें अपना बना करके बाबा ने जो जीवन बना दिया है, हीरे जैसा जीवन बना दिया है, वो चीजें मिली जिनकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। भगवान मिलेगा आसान थोड़े होता है। एक जगह किताब में मैंने लिखा था कि अगर कोई कहता हो कि आओ हम तुमको भगवान से मिला दें, या हमको भगवान मिल गया है, तो ऐसे मानना नहीं, समझ लेना जरूर धोखा है इसके पीछे। इतना भगवान मिलता है नहीं फ्री में, इतने आसान से नहीं मिलता है। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम लोग तो बिना मेहनत के मिल गए, मिला ना? आप में से कौन समझते हैं मैंने बहुत मेहनत किया तब जाके भगवान मिला, हमारे मेहनत का परिणाम मिला? कोई है ऐसा जो समझता मेरी मेहनत से मिला? अबे कितनी मेहनत करने वाले बहुत मेहनत किए, कहां मिला? कितना ढूंढे कहां मिला वो? कितनी उसकी चाह थी उससे मिलने की, कितनी गहरी तमन्ना थी। नौदा भक्ति में तो सिर कटाने के लिए तैयार थे कि भगवान आपके दिव्य दर्शन मिल जाए बस, आपकी एक झलक मिल जाए बस, वो प्यार के सागर आपकी प्यार की एक बूंद मिल जाए बस, एक बूंद मिल जाए। लेकिन बूंद तो क्या, सागर का सागर मिल गया, पूरा का पूरा मिला। कभी कल्पना नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था। सन 1978 में मधुबन में आना हुआ और तब मधुबन का जो खाका था हमारे मन में बड़ा विशेष था। इतना आनंददायक था कि ये मधुबन का जो फोटो था वो ऊपर दिखाई पड़ता था, थोड़ा सा जिसे लगता है आकाश में, और वो स्वर्ग है क्योंकि मधुबन को स्वर्गाश्रम कहते थे। पहले पत्रों में भी लिखते थे मधुबन स्वर्गाश्रम है, तो लगा कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जब यहां देखा आया तो हमने कहा यार, मैं समझा आसमान में है, ये तो धरती पर ही है। फिर मधुबन देखा, मधुबन के एक एक भाई बहनों को देखा, क्योंकि मेरी दृष्टि में था कि ये सारे देवता ही है, सारे फरिश्ते हैं। बहुत अच्छा इमेजिनेशन था। मैं यूपी में सुल्तानपुर, अयोध्या, फैजाबाद यहां का रहने वाला। मेरे माताजी, पिताजी, माताजी और परिवार के सब सदस्य वो ज्ञान में आ गए थे। हम छोटे थे, सब परिवार वाले बाबा मामा से मिल लिए लखनऊ में, कानपुर में जाके। मैं छोटा था, मुझे घर पे छोड़ दिया। सोचा कि ये तो बहुत दूर, वहां जाना पड़, पैदल भी चलते थे लोग, 20, 25, 30 किलोमीटर तक पैदल पैदल चले जाते थे। बाबा कहते थे बच्चे देखो बाबा की याद में चलो तो थकेंगे भी नहीं और सहज पार हो जाएंगे। वो लगन थी, हड्डी सेवा होती थी। वो दिन थे जब त्याग और तपस्या की बात होती थी, सारा जीवन इसके साथ ही चलता था। तपस्या के बिना तो जीवन ही नहीं, यह महसूस होता था। और त्याग ही जीवन है, त्याग के बिना कुछ मिलने वाला नहीं। एक लंबे समय से अब त्याग की बात नहीं हो रही है, अब तो आनंद के दिन है। मक्खन बना बनाया मिला है सबने, हमारे वरिष्ठों ने, बड़े भाई बहनों सब तैयार किया और हम उसको प्राप्त करने के लिए पहुंच गए। और आज ऐसी स्थिति है कि चाहे कोई बहुत पुराने हो चाहे कोई नए हो, हम सब चल रहे हैं समान रूप से। बाबा ने किसी को यह नहीं कहा कि आप पीछे आए हो तो नहीं जा सकते। अभी बाबा ने पूरी छूट दी है कि हम अपने मंजिल पे पहुंच सकेंगे। तो इतनी सब चीजें, मुझे ऐसा लगता था परिवार में रहते हुए, छोटा था, घर पे हमको छोड़ा, जब हम अव्यक्त हुए बाबा, तो उसके बाद हम आए। आने के बाद ख्याल में आया तो घर वालों को मैं कहने लगा कि चलो साकार में आपने हमको घर पे छोड़ दिया, अव्यक्त में हम आपको घर पे छोड़ देते। हम यहां आ गए, वो लोग वहां रह गए। हालांकि सब परिवार में ज्ञान में है, सब परिवार में ज्ञान में रहते हुए बाबा मां की पालना लिया, लेकिन मुझे वो ध्यान में है कि बाबा के तमाम पत्र जो है, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, HMV का रिकॉर्ड होता था, कल्प वृक्ष के बड़े बड़े चित्र हैं और झाड़ के, त्रिमूर्ति के, इनके जो चित्र हैं, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं बाबा से नहीं मिला। अभी भी लगता है कि मैं बाबा के समय में था, अभी भी हूं और बाबा के साथ रहूंगा। और ये साथ की फीलिंग कैसे आई, ये मैं कैसे बताऊं आपको, किन शब्दों में बताऊं। लेकिन अनुभव जीवन का यही रहा इस ईश्वरीय जीवन का, अलौकिक जीवन का, कि जब से मैं बाबा यहां आया हूं इसके पहले से ऐसी लगन लगी कि अभी तक भी ऐसा लगता है बाबा हमारे साथ है, पल पल साथ है। ये संयोग की बात है, हमें मालूम नहीं था आगे चल के मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, इतने महान संगठन में, इसमें मैं आपके सामने बैठ के यहां बैठूंगा, ये कभी कल्पना नहीं थी, कभी सोचा नहीं था। और दादियों का, बड़े बहनों का, भाइयों का, इनका सबका इतना असीम प्यार मिलेगा, बिल्कुल कल्पना से परे। आया, किचन की बड़ी महिमा सुनी थी, और आते ही किचन में मैं लग गया। 20-22 साल तक तो हम तो झाड़ू पोछा करते रहे, हम लोग भोजन बनाते रहे, दादियों का भोजन बनाए, दादी रत्नमोहन दादी, निर्भय भाई जी का, इनका भोजन बनाता रहा 15-20 साल। हाँ जी जी जी। फिर 8 साल तक दादी बाबा के रथ का, 8 साल तक जब तक दादी यहां पर थी तो उनका भोजन बनाने का मौका मिला। दादी ने कहा कि हमारा खाना बनाओगे, मैंने कहा दादी ये भी कोई नहीं कहने की बात है। फिर कहती है कि यहां से चावल ले लेना, वहां से दाल ले लेना, फलाना आटा बना रोटी बना देगा, तुम सब्जी बना देना बस। मैंने कहा दादी ये भी कोई बात होती है। लेकिन बड़ा समीप मिला, इतना प्यार मिला इस संगठन से। छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं आपको, जिन चीजों से गुजरे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अनुभूतियां दी, बड़ी अच्छी प्रेरणाएं दी, जीवन के इस इमारत में एक एक ईंट सबने जिन्होंने लगाई है, वो सहयोग के लिए हमारा हृदय श्रद्धा से उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। दिल कहता है कि उनके गुण गाएं जिन्होंने आज यहां तक पहुंचाया है। और यही चीज है जो बाबा के प्यार का अधिकारी बनाता है। तो इस ईश्वरीय परिवार में ये नहीं मालूम था आगे चल करके ऐसी सेवा होगी, मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गीतकार बनूंगा, बाबा के हर एक प्रोग्राम में बाबा की जगह पे बाबा पीछे बैकबोन रहेगा और हमको आगे बढ़ा के कहा बच्चे हमारी जगह पे तुम स्वागत करो, पीछे से सकास देगा। आज इतने वर्ष हो गए, 35 वर्ष से ज्यादा हो गए, मधुबन में इतने प्रोग्राम, इतने दादियों के साथ इतने आनंद लिए हैं कि आप सबको देखकर मन कहता है कि जो मुझे मिला है वह सब उठा के बांट दो, सब दे दो आपको। कितना दे सकता हूं ये तो हुआ ऊपर जाने, लेकिन दिल में होता है कि मैं अपने एक एक भाई बहन, कोई कहीं भी हो, थोड़ा अगर किसी का चेहरा लटका हुआ हो, थोड़ा मुरझाया हुआ हो, तो उसको पकड़ूं, उसको झकझोरूं, उसको थोड़ा मुस्कुरा के मुस्कान दूं और पूछूं भाई क्या बात है, क्यों चेहरा लटका है, आखिर भगवान मिल गया, ज्ञान मिला, खुशियों की खान मिली, सब कुछ तो मिला, अब चेहरा लटकाओगे तो काम कैसे चलेगा, है ना। तो मैं एक शब्द में आप सब जितने भी हमारे भाई बहने सामने बैठे हैं, थोड़े से बैठे हैं, इन सबको मैं कहना चाहूंगा कि इस ईश्वरीय जीवन में इसका महत्व और जो हमें मिला है उसकी अनुभूति, उसकी कॉन्शियस, उसका एहसास, उसका आभास करते चलिए। जितना गहरा आभास महसूसता होगी उतना ही आनंद आएगा। और ये साधारण नहीं, मैं सबसे पहले आप सबको बधाइयां देना चाहता हूं। पहली बधाई तो ये देना चाहता हूं कि इन साधारण से नेत्रों ने भगवान को पहचान लिया, सबसे पहली बधाई तो ये। तो एक बार ताली बजा के अपना अभिनंदन कर लो। दूसरी बधाई है पवित्र जीवन की। इतना पवित्र जीवन इस गंदी दुनिया में, इस घोर कलह युगी संसार में, इतने अच्छे सोच, इतनी अच्छी समझ, इतना अच्छा लक्ष्य और इतने अच्छे लक्षणों के साथ जो हमारे ईश्वरीय परिवार इतना आनंददायी परिवार है, इस परिवार में आना और बाबा को कहना कि बाबा हम आपके हैं, आप हमारे हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये दिल का गीत है। मैं ओम शांति भवन बैठा था, स्लोगन आया, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यही धुन बजता रहे मन में, तुरंत ही 3 मिनट में गाना लिखा। ये मालूम नहीं था आगे चलकर कि ये बजेगा बनेगा, ये मालूम नहीं था। मैं तो अपनी खुशी में उसमें उमंग में तुरंत लिखा, मुरली सुनते सुनते ही 3 मिनट में बन गया। आज सब सुनते हैं, डांस करते हैं, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये खुशनुमा जीवन, ये प्राप्तियों का जो आभास है, ये अनुभव है, अनुभूतियां हैं, इन अनुभूतियों को हम सबको समान रूप से और तीव्र रूप से अच्छी तरह से लगन लगा के अनुभव करना है। तो ये अंदर अंदर जो फीलिंग है, इस फीलिंग ने ईश्वरीय परिवार के बड़ा करीब लाया। तो तमाम गीत अभी तक गिनती नहीं है, लेकिन कहने में कहते हैं 5,000-6,000 गाने, लेकिन पता नहीं कितना है मालूम नहीं। इतने गाने बाबा ने बनवाए, ताली बजाना है बजा लो। और उनमें से ये जितने भी गाने हैं जो आप आनंद लेते हैं, आपके साथ मैं भी अजनबी बन के, ये नहीं कि मेरा गाना लिखा है, बल्कि जब उनको सुनता हूं तो तासुब होता है कि बाबा कहां से दिया। यहां तक कि यहां अपने ईश्वरीय परिवार में ही नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो सिंगर्स हैं बॉलीवुड के, उन लोगों के सामने जब गीत जाता है, एक गीत शायद सुना होगा आप सबने, चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया, थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया, आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया। ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उसमें जो कोरस गाने वाले थे वो लोग कहा क्या गाना लिखा है, पलकों से उठा के मोती आंखों का बना लिया, थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। किसने लिखा है? तो सबने इशारा दिया, भाई जो बैठा है कोने में उसने लिखा, आपने लिखा भाई, क्या कमाल का लिखते हैं। फिर सुरेश वाडकर जी रिकॉर्ड में गाना गा रहे हैं, कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। वो जब गाना गा रहे थे तो गाने में जो ये था, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, वो तो म्यूजिक के हिसाब से गा रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा इशारा दिया, हमने कहा सुरेश जी इसमें जो है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, तो ऐसा नहीं है सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, ऐसा नहीं, कौन तुम्हारा साथी है। कहते वाह सतीश जी, तो क्या बात कही आपने, एक है कौन तुम्हारा साथी है सोचो, कोई नहीं, और एक कौन तुम्हारा साथी है, दोनों में फर्क हो गया ना। ये फीलिंग्स, इन फीलिंग्स ने बहुत करीब लाए। और जब गा रहे थे मीठे बच्चे बोल ये कितने मीठे हैं, मीठे हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे। कहते हैं वाकई सतीश जी क्या गाना, कितना मीठा, कितना अच्छा धुन है, ये उनके बोल है। एक गीत था, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा, है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा, चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा, खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। आगे बड़ी अच्छी लाइन, आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो, दिल हो बड़ा सबके लिए शुभकामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा, आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। कविता जी गा रही थी, कहती है दादा, अब पता नहीं दादा कैसे कह रही थी, दादा ये जो गाना लिखा कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाए, क्या गहराई है इसमें, क्या चीजें हैं, कितनी भावना आपने इन शब्दों में भर दी। मैंने कहा सब उसकी कृपा है, उसकी देन है, जो कुछ भी हमें क्या है, तो इन अनुभूतियों से उनको मिलता है। मुझे आशा है और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भाई बहने जो भी बाबा के बच्चे हैं, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हैं, बाबा उनकी हर तरह से पालना करता है, उनकी परवरिश करता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार में ऐसे भाई बहने मिले, इतनी प्यारी प्यारी दादियां मिली, इतनी अच्छी पालना मिल रही, और उसमें भी सबसे बड़े बधाई के पात्र तो आप सब हैं। नीमच वाले भाई, कल भी बता रहा था मैं कि आपको पहला चांस मिला और भी चार चार बार मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, एक बार और भी ताली बजा लो बधाइयों की बात। एक बार बाबा ने कहा बच्चे बस संगम युग तो बधाइयों का युग है, बधाइयां देते चलो, ये नहीं कि ये ऐसा है वैसा है, इसमें कुछ सोचो ही नहीं। तो पहली बधाई तो ये कि आपने भगवान को पहचान लिया, उसको जीवन दिया, उसके बन गए, उसको अपना लिया, बहुत बड़ी चीज। और शायद हम सब का अनुभव यही है कि हमने तो अपनाया नहीं, उसने हमको अपना लिया, उसने हमको अपना लिया, अपना बना लिया। हम ढूंढते तो कहां मिलते, आपका दीदार कर सकूं, आपका दीदार कर सकूं थी कहां ऐसी नजर, ये तो आपकी इनायत जो अपना रुख किया इधर, ये तो आपकी इनायत जो अपना रुख किया इधर, ये उसकी देन है जिसने हमें दीदार दे दिया, जिसने अपनी पहचान दे दी, हमारी अपनी पहचान दी, अपने गले लगा लिया, अपना सर्वस्व दे करके अपना बना के भाग्य जगा दिया। हम तो एक छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में आनंद ले रहे हैं। बस भाई बहनों, घरों में बड़ी समस्याएं होंगी, दुनिया में तो समस्याओं का घर है, केवल ऐसा ही अनुभव कीजिए, एक अबोध निर्दोष छोटा सा ऐसा बच्चा जो बाबा की गोद में खेल रहा हो, ये सबसे बड़ी फिलॉसफी, ये संसार का सबसे गहरा रहस्य है, सूत्र है। यदि ईश्वरीय प्यार के पात्र बनना है, यदि ईश्वरीय प्राप्तियों से भरपूर होना है, तो बड़ा कहावना बड़ा दुख पाओना, बड़े मत बनिए। बड़ा बनने के लिए बहुत बड़ा बनना पड़ता है, कैसे बड़ा बनता है ना, है ना। तो यहां पर जो हम बाबा के बच्चे बने हैं, बच्चे बन जाए, जितनी निर्मलता, जितनी निश्चलता, जितनी सरलता, जितनी निरहंकारिता, जितनी विनम्रता हमारी होगी, वो हमको बाबा के करीब लाएगी। और ये मैंने अनुभव किया। मैं सच बताऊं, कहने में ऐसे लगता है कभी कभी कि मैं गुमान कर रहा हूं, या मैं अपना परिचय दे रहा हूं, या मैं अपनी अपना बखान कर रहा हूं। सच बताऊं, ये मैं दिल की बात कह रहा हूं कि इसके पीछे मेरा जरा भी कहीं पर भी कोई अभिमान नहीं कह रहा है, मैं अभिमान नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये दिल का सुमान और जो प्राप्तियों की अनुभूति है वो छलक रही, वो प्रकटती। और सारे ईश्वरीय परिवार के प्रेम का पात्र बना देता है। तो मैं आपको कुछ अपने टिप्स बताता हूं जिन्होंने मुझे बहुत बहुत मदद की इस ईश्वरीय परिवार में बहुत करीब से। जब मैं मधुबन में आया 78 में, तो बहुत छोटा संगठन था, जैसे मैंने बताया, उस समय पर मैंने निश्चय कर लिया कि अब मैं मधुबन में आ गया हूं, बाबा ने अपनी सीट पे बिठाया है, तो मुझे इस मधुबन में रह करके मधुबन की दिनचर्या को पूरा पूरा फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैंने निर्णय ले लिया कि जब तक मुझे मधुबन निवासी बन के रहना है, जब तक मैं ईश्वरीय ज्ञान में हूं और जब तक हमारे लिए संगम युग है तब तक मैं मधुबन में रह करके अमृत बेला मिस नहीं करूंगा। और आज तक वो नियम चलता जा रहा है जिसके कारण बाबा और दादियों ने बहुत इनाम दिए, और आज मुझे बड़ी खुशी है कि आपके सामने मैं बता रहा हूं कि बाबा और दादियों का प्यार मुझे बहुत मिला है जो अमृत बेला मिस नहीं करते। ताली बजा लो ये कम बात नहीं है। रातों रात जागना पड़ता है, दिन में भी जागना पड़ता है, कहीं ट्रेन में है, कहीं गाड़ी में है, कहीं प्लेन में, कहीं पर भी जा रहे हैं, लेकिन लगन है तो लगन है। इसलिए नहीं कि मैं नियमीनाथ बनूं। मुझे याद है हिस्ट्री हॉल में रात को दीदी मनमोहिनी सिरोही से आ रही 11 बजे, और विश्वरतन दादा हमारे बुजुर्ग से दादा भाइयों की साइड में बैठ करके ऐसे ऐसे पांव करके बैठते थे। क्या लगन, उनको देख करके ऐसा लगा इतनी उम्र में इतने अच्छे योगी, इन्होंने हमको सिखाया बिना कुछ कहे, प्रेरणा दी, उनको देखकर मन में आया। सवेरे मैं उठा, योग में जब बैठा 4 बजे, देखता हूं कि मैं अभी बैठा हूं, इसके पहले दीदी बैठी। रात को 11 बजे आ रही है, दिन भर बिजी है, कहीं से आ रही है, सवेरे 4 बजे योग बैठ रही है इतनी उम्र दराज की। तो मैंने कहा जब ये है तो क्यों नहीं हमें इनकी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम कहें दादी तुम बहुत अच्छी हो, दादी बड़ी प्यारी हो, बाबा तुम बहुत अच्छा, हम कहना ना माने। आप किसी दुकान पे चले जाओ और दुकान वाले को बोलो कि आपकी दुकान बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो खुश थोड़े होगा, कहता सामान तो खरीदता ही नहीं यार, दुकान कहता बड़ा अच्छा है, माल बहुत अच्छे है। नहीं तो हम बाबा के गुणगान करने के बजाय गुणवान बन जाए, बाबा इसलिए प्यार करना चाहता है। तो मैंने ये लक्ष्य बनाया, और इस पहली धारणा ने, एक धारणा ने कितनी धारणाओं पर ध्यान दिलाया, बहुत अच्छा मिला, उसे शक्ति मिल गई, एनर्जी मिल गई, एनर्जेटिक। अभी आज जो गाने हम गा रहे हैं, जो लिखे हैं और जो उन अनुभूतियों में हुए हैं, उन गानों में वो हार्ट टचिंग क्यों है, क्योंकि वो बनाए नहीं गए हैं, वो दिल से अपने अनुभवों से निकला है, और उन अनुभवों ने बहुत काम दिया है। मुझे याद है किचन में भोली दादी के पास भोजन बनाया करता था मैं, लगभग 25 साल तक उनके साथ ही भोजन बनाया, जब से आया शुरू में 78 से, तो भोजन बनाते हुए मुझे इतना किचन बिजी होता था प्रारंभिक दिनों में, 78 में जब आया तो एक दो साल तक मुझे पता ही लगा क्लास कहां हो रहा है, योग किधर हो रहा है, मैं सीधा वहीं चरणों में बैठता था, रात को कलेवा जो है गर्म करता था, और जो खाना होता था, जो दाल वाल होती थी, ये मूंग की सफेद दाल होती है जो आप सब खाए होंगे, तो दाल का पानी निकाल देते थे, खूब गर्म करते थे, सुखा लेते थे, सवेरे आटे में डाल करके उसका थेपला बना देते थे, और थेपला बना के खिला देते, एक कोई भी दाना, एक भी अन्न वेस्ट नहीं करते थे। जो बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो सन्यासी हो बेहद के, तुम थाली धो करके भी पी लो, लेकिन एक अन्न, एक दाना भी, कणा दाना भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आज देखते हैं, कल देख रहा था मैं वहां टब में, देख रहा था डाइनिंग हॉल में कि खीर आधे आधे गिलास फेंका गया है, मैं सोचा कितना क्या है, कभी पनीर की सब्जी फेंकी गई, कभी कुछ फेंका जाता है, सोच के बड़ा दर्द होता, कहते किसको कहूं। ख्याल में आता है बाबा हम आपके यज्ञ रक्षक हैं, क्या सिखाऊं अपने भाई बहनों को कि एक एक दाना कितना अनमोल है, कितना कणा दाना बड़ा अनमोल है। अगर हम में से इतने भाई बहने भी सीखें कि मुझे थाली में उतना ही लेना है जितना मुझे लेना है, जितना मुझे जरूरत है, ऐसा नहीं कि आप तबीयत खराब करने के लिए, लेकिन बहुत रेयर में अगर कुछ नुकसानदायक चीज है वो त्याज्य है तो फेंके, लेकिन यज्ञ का एक दाना भी वेस्ट ना करें। ये ठीक है ना, हो सकता है, हो सकता है, आप सब सहमत हैं, सहमत हैं, बहुत अच्छी बात। ये हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितने भी ये फंडामेंटल चीजें हैं इन पर ध्यान देने की जरूरत है। फरिश्ता तो जब बनेगा तो बन जाएंगे, फरिश्ता बनने से पहले हम यहां की धारणाओं पर ध्यान दें, अपने ग्राउंड लेवल पर नीचे धरती से जुड़ करके हम वहां से शुरू करें, तब आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि मधुबन की पूरी दिनचर्या को फॉलो करना है, अमृत वेला कभी मिस नहीं करना। सवेरे उठता हूं, उठने के बाद फ्रेश होता हूं, ओम शांति भवन हिस्ट्री हॉल में यहां बैठ के ओम शांति भवन में 18-20 साल हो गए ये योग कराने का मौका मिलता है, फ्रेश हो जाता हूं सवेरे सवेरे दिनचर्या में, यहां मेडिटेशन करता हूं, ये अनुभव करता हूं, यहां बैठे बैठे अनुभव करता हूं, वहां मैं बैठा था, यहां बाबा बैठे थे, बाबा बुलाए और जब मैं यहां बैठा बाबा से 10 मिनट तक पूरी अच्छी तरह बात हुई, इतनी अच्छी बात हुई कि मुझे वो भुलाए नहीं भूलते। जब मैं दृष्टि देता हूं, देते देखते मैं ध्यान देख लेता हूं कि बाबा आप यहां बैठे हैं, मैं वहां बैठा हूं, आप आए और बाबा आपसे रूढ़ियां, वो दृश्य भुलाए नहीं भूलते। बाबा से कितनी बार, सैकड़ों बार मिले, अब तो समय ऐसा है कि बाबा से कितने भाई बहने तो डायमंड हॉल में स्टेज पर भी नहीं गए होंगे, बाबा के सामने पहुंचे भी नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि साथियों, बाबा मम्मा दादियां दीदियां हमारे वरिष्ठ जन ये सब मिलकर के दिल से आपके लिए यही शुभकामना करते हैं कि हम ना पहले आपसे अलग थे और ना हम अलग हैं, हम अभी भी साथ में हैं और साथ रहेंगे। हम सबके दिल का ये शुभ संकल्प है, ये वादा है। ताली बजा लो इन सबके। बाबा से हम एक श्रेष्ठ लक्ष्य लेने के लिए प्रेरणा लेते हैं, जैसे बाबा मुझे कृतार्थ कर रहे हैं। तो मैं सुना रहा था आप सबको, मधुबन में आए तो दो बात का तुरंत ही निर्णय लिया, एक तो मधुबन की दिनचर्या को पूरा पूरा फॉलो करना है, दूसरी बात यह थी कि कोई भी सेवा मिलेगी तो ना नहीं कहना है। और उन दिनों में सब डिपार्टमेंट्स केवल दादियां 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 ही थी, बहुत थोड़े ही हम भाई सेवाधारी मधुबन निवासी थे, 50-60 थे, और दादियों के बीच में रहकर कितनी सेवा का जो चांस मिला। अच्छा, उन दिनों में तो किचन में भोजन जब बनाते थे, सूखी लकड़ियां भी नहीं होती थी, बड़ी मोटी मोटी लकड़ियां होती थी, जलाओ इतना धुआं होता था किचन में, अभी चूल्हा जलाओ धुआं धुआं बन रहना, बहुत वो फिसलन भी थी। ऐसे दिन तो छोटा घर था, बड़ी सेवाएं थे, और यहां सामने जो है जो भी टोली डिपार्टमेंट जहां टोली बंटती है टोली देते हैं, वो जो है स्टोर जो है अभी बन गया है, वो पहले किचन था, वहां पर पीछे स्टोर बड़ा अच्छा था, लेकिन इतना अच्छा था। और हमारे साथ में जितने अपने भाई थे, सूरज भाई, आत्म भाई, रामनाथ भाई, सब जितने भी हैं, ये सब हम सब एक साथ में रहकर इनसे बड़ी प्रेरणा मिली। मैंने 5-6 डायरियां नोट किया उन दिनों में, आते ही हमने सोचा स्वोन्नति के लिए बड़ी प्रेरणाएं मिलती रही। तो पहली बात, मैंने एक डायरी बनाई जिसमें लिखता था मैं पत्र बाबा के नाम, तो रोज बाबा से रूहरिहान करता था, और उस रूहरिहान ने हमें लिखने की कला दे दी, और इतना अच्छा लिखने लगे कि उन्हें में से गीत बनने लगे। तब तो मालूम नहीं था कि चल के गीत बनेंगे, शुरू में तो गीत बनने लगा। मुझे याद है कि 1 बजे का समय है, दिन भर में फुर्सत नहीं मिलती थी, रात को सोना है, लेकिन लगन थी, मैं बहुत दिनों के बाद आया हूं। दादियां 40 साल से ज्ञान में चल रही हैं, अब तो 80 साल हो गए, 40 साल पहले तो मैं देखा दादियां तो इतनी आगे निकल गई, मैं क्या करूं। बाबा से बात करता था, बाबा संगठन इतना बड़ा है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई हुनर नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। और उन्हीं दिनों में गाना लिखा, जाने क्या देखा मुझ में मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया, कोई नहीं थी खूबी काबिल न थे तुम्हारे, सोचा नहीं कभी था बदलेंगे दिन हमारे, नैनों से जादू करके गम सारा हर लिया। तो ये दिल से गीत निकलता था, तो गीत निकले। अब 13-14 साल तक, कितने साल तक मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, बस क्लास में ऐसे आप सबके आगे इसे बीच में गाया करता था। तो याद है कि रात को 1 बजे हैं, और विशाल भवन का निर्माण जब हुआ था तो ऊपर छत खाली होती थी, छत पे घूम रहा हूं पागलों की तरह, ऊपर भी बारिश हो रही है और आंखों से भी बारिश हो रही है। और लिख रहा हूं, बाबा से बात कर रहा हूं कि बाबा मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं, गांव का गंवार जैसे छोटा था, वो पता नहीं था कहां जाना है, सभ्यता क्या होती है, अच्छे लोगों के बीच में कैसे रहते हैं, कुछ भी नहीं पता था। स्कूल से आए, थोड़ा सेवा करते और यहां पहुंच गए मधुबन में। फिर दादियों के बीच में आए तो इतना कुछ सीखने को मिला, लेकिन मन उस समय कहा कि बाबा मैं तो बहुत दिनों के बाद आया हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे अपना आपको रिझाऊं, क्या करूं जो आपको खुश कर लूं, सबको तो आप प्यार बांट रहे हो, सबके तो प्यारे हो, लेकिन आपको तो सारे प्यारे हैं, लेकिन मुझे तो आप ही प्यारे हैं, मैं क्या करूं जो आपका प्यार पाऊं, आपकी नजर मेरी तरफ हो। ये दिल से लिखता था। आया मैं लिख रहा हूं 1:30 बजे की अपने कमरे में, और लिख रहा था अपनी यही अंतर की कथा, अंतर व्यथा नहीं, कथा लिखता था, बाबा से बहुत प्यार, शिकवा शिकायत जैसे। फिर उस समय आता है उपकार तुम्हारा बाबा, किन शब्दों में मैं गाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं, मरुभूमि बने जीवन में हरियाली बनकर आए, मुरझाए से इस मन पर खुशहाली बनकर छाए, तुलना के योग्य नहीं तुम उपमा किसकी बतलाऊं, इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। ये अंतर मन से पहला गीत लिखा, ये बन के आया। और उसी समय से ये लगन थी कि मुझे कुछ करना जरूर है, और मैंने मधुबन के दिनचर्या को फॉलो किया। और चलते चलते मैं भूल न जाऊं तो आप सबको बता दूं कि आप भी अपने लिए दिनचर्या ऐसा करें। मैं अमृत वेले उठते ही सबसे पहले 5 मिनट के 10 मिनट के समय को मैं बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूं। मैं जानता हूं कि उठते ही अगर आपने संकल्प जो कर लिया, वो संकल्प आपका दिन भर चलेगा, पक्का कर लो अपने आप को। 5 मिनट से 10 मिनट के समय में ऐसा है जैसे घोड़े को अगर आपने हस्तबल में बांध दिया, और बांध तो दिया लेकिन जैसे सवेरे आपने खोला तैसे घोड़ा तो पहले ही खड़ा था भूखा प्यासा, घोड़ा बाहर निकला, घोड़ा दिन भर भाग रहा है आगे आगे, और आप घोड़े के पीछे कब तक भागेंगे, कहां तक भागेंगे, घोड़ा आगे आगे और आप पीछे पीछे। और उसी घोड़े को अगर आपने पकड़ लिया लगाम, थोड़ा सा लगाम पकड़ लिया लगाम, और थोड़ा उसको थोड़ा मालिश पालिश कर दी है, थोड़ा प्यार कर दिया, फिर उसके बाद भले थोड़ी देर बाद पानी पिलाओ तो भी वो सारा दिन आपके पीछे पीछे। उसको इतना लगना चाहिए कि ये हमारा ख्याल करने वाले हैं, फिर पानी पिलाइए उनको, कीजिए सब चीज कीजिए। यही मन का घोड़ा भी ऐसे ही है, अगर उठते ही 5 मिनट तक आपने उसको पकड़ लिया, आओ मेरे मन आ जाओ, देखो बाबा को देखो, सामने देखो बाबा मुस्कुरा रहा है, अरे जरा प्यार से करो, सुबह 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 उठो कहते कहते, सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते नमस्ते, ओ मीठे बाबा नमस्ते नमस्ते। तो सवेरे उठ के पहली दृष्टि में बहुत अनमोल होता है बाबा को नमस्ते करें, अपने उस प्यार से इतना भर लें बाबा के प्यार से कि किसी भी इंसान के प्यार की जरूरत न रहे। इसलिए पहली फीलिंग 5 मिनट के संकल्प में बाबा से नमस्ते कर लें, स्वयं को भर लें, अपने को महसूस करें कि मैं बाबा के साथ में बाबा की गोद में रहा सोया, बाबा मुझे फ्रेश करके ताज दे रहे हैं, तिलक दे रहे हैं, और बाबा दिल तख्त पे बिठा के खूब प्यार करके तैयार करके भेज रहे हैं कि जाओ बच्चे आज मैं नहीं जा रहा हूं, मेरी जगह पर धरती पर तुमको जाना है। ये जितनी भी ये जो दृश्य मैंने बताया आपको, इसको जितना आंखों के सामने आप रखेंगे उतना आपकी दिनचर्या में बहुत मदद करेगी। और मेरा अपना अनुभव रोज का यही है, मैं रोज सवेरे उठता हूं, रोज ये प्रैक्टिस करता हूं, इसी अभ्यास को लेता हूं और यही मैं बार बार सुनाता भी हूं, इसलिए गाना भी गाया है मैंने। नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका मस्तक पर मेरे भिजेगा। दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली, प्यार से झोलियां भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका मस्तक पर मेरे भिजेगा। तो ये जो प्यार के जो चीजें हैं, इसको सवेरे सवेरे अपने दिनचर्या को एक आप ले लें। रोज सवेरे तो हम सब उठते ही हैं, लेकिन उठते ही एक संकल्प ले लें और इस श्रेष्ठ संकल्प के साथ, ये जो बाबा की मुरली आज चली, ये बाबा की मुरलियों ने बहुत प्रेरणा दी 82 में, उन दिनों में बहुत मदद करते थे 78 से 82 की, ये सब जितना भी रहा, तो इनके ऊपर मैंने ढेर सारे गीत भी लिखे। हर मुरली जो भी मिली है उन मुरलियों से बड़ी प्रेरणाएं मिली हैं। अब मुझे याद है जब मुरली चल रही है मैं कहां बैठा था, कैसे गीत, कौन से गीत की रचना हुई, वो सारे एक एक गीतों के पीछे पूरी कहानियां होती थी। तो ये लिखा और ये अनुभव में पाया, तो मैंने एक डायरी बनाई जिसमें पत्र बाबा के नाम लिखा, एक डायरी बनाई जिसमें बाबा के रोज मुरलियां नोट करता था, पॉइंट्स नोट करता हूं। आज भी मैं रोजाना अपनी मुरली डायरी में नोट करता हूं, कहीं भी रहता हूं नोट जरूर करता हूं, भले याद भी करता हूं, याद भी रखता हूं, लेकिन नोट जरूर लेता हूं। फिर तीसरी डायरी थी आज बाबा ने क्या कहा, वो जो बाबा कहे होते थे उसके ऊपर थोड़ा सा अपना। एक बार बाबा ने कहा कि अब तो साकार की मुरली पूरी हुई, अब तो रिवीजन चली, रिवाइज भी हो गया, अब तो बाबा आते हैं बच्चों की देख देख करने के लिए, अब तो कोर्स पूरा हुआ, अब तो फोर्स भरने के लिए आते रहते हैं। तो मैंने लिखा, बाबा आप साकार में जिसकी पालना की होंगे उसकी पालना की होंगे, मैं तो रह गए। दूसरा अव्यक्त में रिवीजन भी पूरी हो गई, अब जिनके लिए पूरी होगी उनके लिए पूरी होगी। आप अव्यक्त में भी पालना दे रहे हैं, ये भी अव्यक्त दिन पता नहीं कब तक है। आप कहते हैं मैं देख रेख करने, अभी तो पहले पालना तो करो, तो देख रेख करना पहले हमारा ख्याल तो करो, अभी तो मैं आया हूं और आप हमारी देख रेख करने आ रहे हैं, बाबा ऐसे कैसे काम चलेगा। तो ऐसे जैसे कोई शिकवा शिकायत हो, बाबा से बातचीत हो, डिस्कस हो, ऐसी ऐसी चीजों को मैं लिखा करता था। इन सब चीजों ने इतना अच्छा अनुभव कराया और अच्छी प्रैक्टिस कराई कि मैं सूरज भाई के देखता था तो एक उनके पास एक गीत की डायरी थी, तो वो डायरी में लिखा होता था कि ये रिकॉर्डेड हो गया, ये है। उन्होंने बड़े गीत लिखे, आप सबको मालूम नहीं होगा, सूरज भाई ने भी गीत लिखे हैं शुरू से। मालूम है किसको, किसको मालूम है? और कौन सा गीत लिखा है मालूम है? हाँ, एक है योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा है। उनको भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनकी डायरियों में देखता था। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, हैं? फिर वो कहा तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दर्शा दिखलाती हैं, ऐसे चीजें। ये गाने हैं संसार के नैया को हम पार, तमाम ऐसे गीत हैं। उनसी गीतों से बड़ी प्रेरणा मिली, उन्होंने देखा है तो बहुत अच्छा गाता है और ये गाने बनाने में इसकी बड़ी अच्छी इंटरेस्ट है, रुचि है। मैंने तो केवल यही संकल्प किया था कि जो कहा जाएगा हाँ करेंगे, तो सब कह देते थे कि भाई ये करो, दादियां कहती थी फलाना आया है इनका वेलकम करना है, शुरू करना है। तो इन सब चीजों ने इतना अच्छी प्रैक्टिस दे दी। एक उदाहरण से बता दूं, एक बहन आती है और कहती है भैया मैं सबको तो नहीं जानती हूं, सतीश भाई आपको जानती हूं, आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, मेरा मकान सेंटर बहुत अच्छा बना है, मैं दादी जी को निमंत्रण देने के लिए आई हूं, तो कैसे होगा क्या होगा मालूम नहीं है, आपकी हिंदी अच्छी है तो थोड़ा ड्राफ्ट बना लेंगे, एक लेटर बना देंगे। मैंने कहा आप तो हाँ कहना सीख ही लिया है, हाँ जरूर कर दूंगा, तो एक ड्राफ्ट बना दिया। फिर बोलते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग भाई जी बहुत अच्छी है, आप उसको लिख भी देंगे, कहाँ मैं जाऊंगा, किस आर्ट डिपार्टमेंट में जाऊं, तो ड्राइंग हमारे पास पेन होता था, मैं बहुत अच्छे डिजाइन में उसको लिख भी देता था। फिर कहते थे आप हिंदी बहुत अच्छा बोलते, इतनी अच्छी हिंदी, ये तो मेरे से बोला नहीं जाएगा, आप दादी के आगे बोल दो ना, यही मैं बगल बैठ जाऊंगी। मैंने कहा चलो ये भी कर लेता हूं। फिर उसके बाद बोलते हैं भाई जी अब तो दादी ने कहा मैं आऊंगी, सुन के बड़ा दादी बड़ी खुशी हुई, दादी तो बड़ी उमंग उत्साह भरती थी, दादी ने कहा मैं जरूर आऊंगी, मुझे बहुत बधाई दिया बहन ने, बहुत धन्यवाद। कहा अब दादी आ रही भाई जी उनका वेलकम तो करना है, तो एक वेलकम सॉन्ग बना दो ना, ठीक है बना देता हूं। कहा भाई जी कौन गाएगा, इसका धुन उन बना दो, गा के टेप में भर दो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है हाँ जी ये भी कर देता हूँ। फिर कहा भाई जी हमारे पास गाने वाले इतने नहीं है, आप आके गा के भी जाओ ना, चलो ये भी कर देता हूँ। कहने के भाव ये जब आप कोई काम एक शुरू करते हैं तो अगर हाँ जी कहने की बात है तो ना भी आपके अंदर वो गुण है तो बाबा आपको जब सेवा देता है तो शक्ति भी देता है, आपको योग्यता भी देता है। इसलिए हम सब ईश्वरीय जीवन में जरूरी अनुभव करें, आभास करें कि मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है विश्व परिवर्तन के लिए, तो मेरे अंदर वो क्षमताएं भी बाबा देगा। ये मत समझिए कि मेरे अंदर तो ये चीज नहीं, आपके अंदर है, आप दे सकते हैं कर सकते हैं। तो मैंने 6 डायरियों में जैसे बताया, एक पत्र बाबा के नाम, एक मुरली की नोट्स पॉइंट्स नोट करने का, तीसरा आज बाबा ने क्या कहा, चौथा हमने लेख लिखने के लिए लेख लिखता रहा और लिखना शुरू किया। फिर 15-20 वर्ष तक तो ज्ञानामृत वगैरह में आता रहा, इन दिनों में बहुत बिजी हो गए, अब तो नहीं आता है लेकिन पहले बहुत आया करता था। उन सब ने चिंतन मंथन करने की एक अच्छी प्रेरणा दे दी, एक अच्छी लगन दे दी कि हर एक सब्जेक्ट पर हर बात की गहराई में जाना। और मैं आपको बताऊं मेरा बहुत प्रिय विषय है स्वराज अधिकारी बनना, इससे मैंने बहुत किया। मैं पहले ये बता दूं तो मैं आपको बताता हूं कैसे मैंने इस अभ्यास को बढ़ाया, कैसे किया। तो उसमें ये लिखता था लेख लिखना, फिर गीत अपने आप बनने लगे क्योंकि प्रोग्राम ऐसे होने लगे, आज दादियां जा रही हैं विदेश में, कोई आ रहा है, एक मिनिस्टर आ रहे हैं, सब आए, तब तो कोई डिपार्टमेंट तो था ही नहीं कोई खास, तो जो हम लोगों को दादी कहती है कि किचन वाले आए, कोई ड्रामा बना रहा है, कोई डायलॉग बना रहा है। हम सबको याद है, हम सब किचन वाले मिलकर के सूरज भाई लिखते थे, कव्वाली लिखते थे, हमको पता नहीं था कव्वाली क्या होता है, ऐसे ताली पीट पीट के उल्टा पुल्टा जैसा खूब गाते थे और लोग वाह 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 कहते थे। मैं समझा कि शायद वाह वाह शाबाशी देते होंगे, हो सकता है शाबाशी देते होंगे लेकिन क्यों ताली बजाते मालूम नहीं। तो उन दिनों के बाद शुरुआत में बहुत अच्छा एक रंग आया और इतना इतना खुशनुमा परिवार कि सुबह से लेकर के शाम तक दादियों के साथ में रहकर, इतनी दादियों के साथ पिकनिक करना, छोटा परिवार इनसे मिलना, उनका हालचाल पूछना, दादी प्रोत्साहित करती थी और वो सब चीजें हैं। आज ये बात ख्याल अभी भाई जी नीचे जाने वाले थे दादियों से मिलने, मैं देखा भी दादी से मिलके आया, हम लोग वहां गए थे तो मैं देख रहा था कि इतना ज्यादा दिनचर्या और इस उम्र में भी अभी भी दादी जानकी, दादी रतन मोहिनी दादी, ये सब इतना प्यार से हमारी पालना कर रहे हैं कि आज भी दादी जी का मन ये कहता है कि हम सब दिल्ली में बैठे 1,00,000 भाई बहने बैठे, अमृत बेले का मैं योग कराऊं 1,00,000 के बीच में, मुरली सुनाऊं सब भाई बहनों के बीच में, ये दादी जी की इच्छा है। और आज भी दादी चाहती है कि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं, जहां भी भाई बहन हैं, वो संगठित होकर सेंटर्स पर योग करें। मुझे याद है दुबई में 10 दिन के लिए दादी के साथ में था, मैं 25 किलोमीटर से वहां से आता था दादी के बगल में आके 4 बजे मैं बैठूं, जब भी मैं बैठूं मेरे से पहले दादी बैठ जाती थी, दादी बैठे मैं दौड़ लगा के आऊं, जैसे दादी बैठे तो मैं बैठता था। तो मैंने कहा कि दादी में इतनी लगन, इतना उमंग उत्साह कि अब शरीर नहीं चलता लेकिन दादी ने अभी तक अमृत बेले का योग कराया। चाहे वो गाम देवी में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, दादी की बहुत इच्छा होती है हम सब मिलकर। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जहां पर भी जिस सेवा केंद्र पर अमृत बेला संगठित रूप से अच्छी पालना होती है, जहां मुरली अच्छी तरह सुना जाता है, उनका रिवीजन होता है और उसके ऊपर वर्कशॉप होते हैं, पेपर्स होते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं, जहां पर ज्ञान योग दोनों ये चीजें पक्का चलते हैं, वो सेंटर हमेशा फलीभूत रहता है और भाई बहने भी उत्साहित रहते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं और फिर कोई चीज कमी नहीं होती, भंडारा भी भरपूर और भंडारी भी भरपूर। तो हमारी इस बात को दोनों को जितना हो सके, भाई बहनों को, वो सब घर में है तो सेंटर पर है तो, हम सब मिलजुल करके दादी जी के संकल्प को पूरा करें। ये दादी जी के प्रति हमारी सच्ची सच्ची जो सच्चा सच्चा स्नेह है, सच्चा प्यार है, ये सही प्यार होगा। तो एक बार दादी जी को प्यार करते हुए उनके लिए ताली बजा लो, दादी जी का संकल्प। तो इस तरह से एक अच्छे संकल्प जी, हाँ जी जरूर जरूर। एक कल गाना सुना था, अच्छा ये मैं घड़ी देखता तो इसमें तो भी चलिए कोई नहीं। घड़ी बंद है, मैं सोचा भी तो बहुत बहुत टाइम है पड़ा है। तो ये बहुत अच्छे हैं, ऐसे ढेर सारे अनुभव हैं। मैं पांच चीज मोटे मोटे तौर पे बता दूं आपको। एक तो अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है, सवेरे उठें, बाबा को आप नमस्ते कर लें और एक सोमान ले लें कि मैं पवित्रता का अवतार हूं, मैं अवतरित हुआ फरिश्ता हूं। एक सोमान को आठ बार कर लें, मैं शिव शक्ति हूं, मैं क्या नहीं कर सकती हूं, और दिन भर में आठ बार, ये दिनचर्या में बार बार प्रयास करें, ये आपको बहुत मदद करेगा। ये मेरी पहली बात हुई। दूसरी बात कि बाबा की मुरली पर बहुत अटेंशन दें, बाबा की मुरली के मेन मेन पॉइंट्स को याद करने की प्रयास करें। याद करना इतना सहज नहीं होता है, लेकिन आप आदत डालें, अभ्यास करें, कम से कम वरदान स्लोगन इनकी हेडिंग एसेंस है, धारणा सार है, इतना याद कर लें। मैं रोज याद करके तीन चार लोगों को फाइनल मुरली होने से पहले ही सुना देता हूं, इतना टेंशन देता हूं, उसी पे गीत बनते हैं। हर रोज बाबा की अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलते हैं, बहुत अच्छी मदद मिलती है। तो मुरली पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि बाबा का प्यार पाना है, निरंतर साध का अनुभव करना है, तो बाबा की मुरली पर बहुत बहुत ध्यान दे, ये आपको बराबर बाबा की साध का अनुभव कराती रहेगी। तीसरी बात वो है कर्म योग। कर्म करते हुए सारे दिन में तीन तीन घंटे का हम ऐसा एक हिसाब बना लें, मैं ईश्वरीय बच्चा हूं, मैं ईश्वरीय विद्यार्थी हूं, तीन घंटे के लिए, फिर अलग, फिर मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूं, मैं ईश्वरीय संदेशवाहक हूं, मैं ईश्वरीय यात्री हूं, ऐसे तीन तीन घंटे का प्रोग्राम बना लें और उसमें अपने आप को करें। मैं पांचों स्वरूपों का अभ्यास कराता हूं, पिछली बार भी बताया था आप सबको, याद है सबको। मुझे कई भाई बहनों ने बताया कि मैंने बहुत अभ्यास किया और आपकी ये बताई हुई बात बहुत अच्छी लगती। फिर एक बात दोहरा देता हूं जल्दी जल्दी में, मैं ज्योति सितारा, बोलिए, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। ये पांचों स्वरूपों का अभ्यास है, दिन भर में जो पांच बार भी नहीं होता था, जब से आया बहुत लोगों ने मोबाइल टोन बना लिया और अंदर अंदर चल, अभी मैं शांतिवन से आ रहा था, इसको 20 बार अभ्यास कर लिया, तो ये बहुत अच्छा है, आप इसको अभ्यास करें। कर्म योग के और ढेर सारी बातें, ये महसूस करें बाबा जिसे लाइट आ रही है, बाबा मेरे सिर के ऊपर है, यहां पर बाबा से लाइट आ रही है, मैं बाबा की छत्र छाया में निरंतर चल रहा हूं, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, ये अभ्यास आपको बहुत मदद करेगी। और चौथी बात, कर्म योग के बाद चार्ट जरूर लिखें। चार्ट बहुत अच्छी चीज है स्व उन्नति का। मैं 40 वर्ष से लिख रहा हूं, जिसका आज बहुत बेनिफिट मिल रहा है। क्या लिखता हूं उसमें, कभी मौका मिला फिर बताएंगे। और पांचवी बात, अंतिम बात, कि रोज रात को बाबा को पूरा पोता मेल दे दें, अपने शरीर का धन्यवाद कर दें, अपने भाग्य का धन्यवाद कर लें, सभी संबंधियों का धन्यवाद कर दें, प्रकृति को धन्यवाद कर दें और प्यारे बाबा का धन्यवाद करके फिर सोएं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
एक दो बात मैं भी आज सतीश भाई के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे तो मैं बता दूं कि हम सारे सेंटरों में हमारा सामूहिक अमृत वेले योग चलता है, सभी सेंटर पूरे सब जोन में, और सभी लोग डेली डायरी लिखते हैं, सभी बहनें मुरली को बड़े प्यार से पढ़ती हैं और सब लोग डायरी लिखते हैं, हम सब बहनों सहित।
बहुत अच्छा, ताली बजाओ भाई, आपके लिए बहुत अच्छी बात।
मैं आपको एक बात बहुत गहरी बताने जा रहा हूं। पिछले 43-44-45 सालों से मैं देख रहा हूं, ये गीत संगीत की दुनिया बड़ी तलवार पे धार चलने वाली दुनिया है। यज्ञ के अंदर ये गीत संगीत की लहर जब से चली, पहले तो रमेश भाई साहब ने गीत गाया और उसके बाद वहां से शुरुआत हुई। हम जब से देख रहे हैं, हमने देखा कई भाई बहन बीच में गीत संगीत लिखने वाले आए, आगे बढ़े। कोटा के, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, कोटा के एक भाई बहन थे, वो भी काफी आगे बढ़े। फिर हमारे एक भाई यहाँ के भी थे, वो सिविल डिपार्टमेंट में इंजीनियर, वो भी बड़े। पंजाब के एक भाई थे, वो भी काफी आगे बढ़े। लेकिन उनमें से वो सब धीरे 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 सब नाम मान शान नाम रूप में उलझते चले गए और धीरे धीरे ओम शांति हो गए। क्योंकि वो लोग नाम मान शान, ये चीज, ये फील्ड ऐसा जिसमें नाम मान शान बहुत मिलता है। सतीश भाई की ये सबसे बड़ी विशेषता देखिए, शायद इनको मेरे ख्याल से 85 के बाद से शायद ये स्टेज पे आने लगे थे, कॉन्फ्रेंस के बाद से स्टेज पे आने लगे, गाने लगे और धीरे धीरे सतीश भाई को यज्ञ में पहचान बनने लगी। इन भाई की एक सबसे बड़ी विशेषता में देखी है, नियम कायदा, जैसे जितनी इन्होंने आज नियम कायदे मर्यादाएं बताई वो पूरा फॉलो करते रहे। उस नाम मान शान इनको ही बहुत मिलता है। और अब तो, पहले तो प्रोफेशनल नहीं थे अपने गीत लिखने वाले, गैर प्रोफेशनल थे, ये तो प्रोफेशनल तरीके से भी इन्होंने गीत संगीत को यज्ञ में एक नई दिशा दी है। प्रोफेशनल कलाकारों से खुद भी एक प्रोफेशनल तरीके से पेश आए। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी महिमा है कि इन्होंने ज्ञान योग तपस्या धारणा और विनम्रता पे पूरा पूरा ध्यान रखा, हमेशा अपने आप को विनम्र और योगी बना के रखा। इसलिए आज सालों से ये चल रहे हैं और सालों चलते रहेंगे, अंत तक चलते रहेंगे। ये मुझे बहुत गर्व है इनके ऊपर। नहीं तो ये फील्ड तलवार की धार पे चलने वाला है, जिसमें नाम मान शान, इसके बाद नाम रूप सब कुछ बहुत मिलता है। ओम शांति। बाकी कविता जी,
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई जी। कई बार आपके ये अनुभव सुने और हर बार कुछ ना कुछ नवीनता लगती है। जैसे आज बहुत सारे गीत जो नहीं मालूम थे वो भी मालूम पड़े कि आपके लिखे हुए हैं। वहां से एक दो भाई ने कहा मैं गीत गाना चाहता हूँ, मुझे सीडी बनानी है। तो मैंने कहा भाई ऐसा है, आप गा जरूर लेना, लेकिन लिखवाने के लिए आप उधर जाओ मधुबन सतीश भाई के पास, आप लिखना मत प्लीज, क्योंकि मुझे पता आप कैसा लिखोगे, तो इसीलिए आप लिखवा उधर से लो और गा आप लेना। क्योंकि ये सचमुच, मैं जब छोटी सी थी तो मैंने एक बार इनको कहा कि सतीश भाई ये आप ना सब्जी जो बनाते हो, आपकी हर सब्जी में ग्रेवी भी अच्छी होती है, रसा भी अच्छा होता है। मैं नई नई सब्जी बनाना सीख रही थी तब, रोटी बनाना मैंने मधुबन में सीखा था, तो यहाँ सीधा रोटी बनाने की सेवा में आई। उससे पहले घर में कभी एक रोटी ना बेली थी ना बनाई थी, सिर्फ यही सीधा ही आके ढेर सारी रोटियां सेकनी सीखी, बनानी फिर भी नहीं सीखी, सिर्फ सेकनी सीखी थी। फिर उसके बाद मैंने कहा राजमा उबाल देती हूँ और उसमें टमाटर डाल के छोंक भी लगा देती हूँ, लेकिन वैसा तो राजमा बनता ही नहीं जैसा मधुबन में बनता है। वो पानी पानी अलग होता है, बीज बीज अलग होते हैं, कई बार पानी ऊपर होता है बीज नीचे होते हैं, तो ऐसा बन जाता है। तो सतीश भाई जी ने मुझे राजमा बनाना सिखाया, फिर डोसा बनाना सिखाया, बहुत सारी चीजें जो इन्होंने मुझे रेसिपी बताई कि कैसे कैसे उसकी ग्रेवी को गाढ़ा कैसे करें। तो मैंने सोचा कि ये भाई सब्जी बनाने वाला है, छोटी थी मैं। फिर मैंने देखा थोड़े दिन बाद ये बोर्ड लिख रहे थे, फिर मैंने कहा बोर्ड लिखने वाला सतीश भाई, बोर्ड पर जब सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखते थे। फिर इनको ओम शांति भवन में जयेश भाई थे एक, कुमार और ऐसे ऐसे कुछ भाइयों के साथ गीत गाते नहीं, वो था मोनो एक्टिंग कर रहे थे, मनोहर दादी आए थे कहीं से, तो उनके साथ ये और जयेश भाई और हमारे गोकुल भाई ऐसे कुछ मिलके ड्रामा सा किया। तो फिर ये ड्रामा करने वाले भी सतीश भाई गोकुल भाई ऐसे बन गए, एक अंग्रेज बन के आया, एक कुछ ऐसे बन के आया, ऐसे करके इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा ड्रामा किया ओम शांति भवन की स्टेज पर। क्योंकि सब दादियों के सामने बच्चों की तरह ही रहते थे, ये हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल आंखों से देखा। फिर पता चला ये गीत बनाने वाले, गीत लिखने वाले, तो इसी तरह कई तरह की पहचान तो हमने अपनी आंखों से देखी है। और ठीक कह रहे हैं भाई जी कि जब तक ये याद रहेगा कि मैं बाबा की गोपिका हूँ, बाबा की हूँ, मैं आत्मा सिर्फ तेरी हूँ, तब तक ये स्थिति ठीक रहेगी, वरना कहीं आए कहीं चले गए, है ना। तो ये वो पल दो पल के शायर होते हैं, ये आजीवन शायर हैं, पूरे संगम युग के शायर हैं। छोटा सा एक चेंज, कुछ 5-6 भाई आज भी कहीं कहीं बात कर रहे थे और बाबा की पहाड़ी पर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, और कुछ गए भी थे चुपचाप, उन्होंने सोचा भाई बहुत हो गई क्लासेस, अभी तो पहला ही दिन है, तो भी कुछ 1-2-4 गए भी थे। तो इसलिए सबको बता देते हैं कि 2 तारीख को सबका ऑफिशियल तौर पे शाम को बाबा की पहाड़ी पर घूमने जाने का कार्यक्रम है, जो चल सकते हो जो चढ़ सकते हो सबके लिए, जो नहीं तो इसीलिए कोई अलग अलग से बीच में से टाइम खींच के छुप छुपा के क्लास के बीच में से छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल तौर पर 2 तारीख को शाम को आप धर्मराज बाबा को पत्र लिखेंगे, उसके बाद 5:30 बजे चले जाएंगे, ठीक है। तो 5:30-6 जब भी आप जाना चाहें, थोड़ा धूप हट जाने के बाद, तो उसके बाद आप जाइए। थोड़ा गर्मी में तो चलना भी मुश्किल होगा, तो थोड़ा ठंडक हो जाए। यहाँ तो वैसे भी ठंडक ही आनंद ले रहे हैं आप, तो ये सब अच्छा लग रहा है बहुत सभी को। और अभी पहला दिन बीता है और बहुत कई क्विंटल चीजें मिल गई ना, ऐसा लग रहा है ना, भारी तो नहीं हो गए? ठीक है, चलिए फिर दिनचर्या मैं कल सुनाऊंगी। सिर्फ ये इसलिए सुनाया कि आपस में उनको पता नहीं होता था कि बहन जी पास से जा रही है, तो इसीलिए वो आपस में बना रहे होते हैं प्रोग्राम, क्लास से बंक करने का, भागने का, तो उनको मालूम नहीं होता कि कोई चेक भी कर रहा है। तो इसी तरह से कहीं शरबत पीते समय बातें ना करें, खाना खाते समय बात ना करें, क्योंकि पता नहीं लगता आपको कौन देख रहा है, कौन देख रहा होता है। तो इसीलिए ये याद रखना जरूरी है कि वो देख रहा है। उसने कहा है भाई 3 दिन ही तो प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी, तो इसीलिए ये आदत। और कल भी आपको खूब बढ़िया तंदूरी रोटी भोजन, बढ़िया पनीर गुलाब जामुन बहुत कुछ मिलेगा, और खाने के बाद सो जाना
अभी से,
ठीक है। खाने के बाद थोड़ी सी देर, सिर्फ 1/2 घंटे की एक्टिविटी करने यहाँ आएंगे, ठीक है। 9 बजे से पहले आना और 9:30 बजे आपकी छुट्टी कर देंगे। थोड़ी सी छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, थोड़ा बाबा के इस संगम युग के जीवन में परिवर्तन और अच्छी क्वालिटी बढ़ाने के लिए क्या करें, तो इसकी छोटी सी एक्टिविटी करेंगे और उसके बाद छुट्टी कर देंगे। तो इसीलिए बिल्कुल ही खाने के बाद दौड़ने लग जाएंगे तो कल करेंगे तो परसों भी वैसा ही करेंगे। तो इसीलिए परसों तो सचिन भाई की क्लास रहेगी, तो इसीलिए कल भी थोड़ी सी देर के लिए भोजन के बाद आप यहां आएंगे 9 बजे से 5-7 मिनट पहले, और 9:30 बजे ऑफ कर देंगे। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर गुड नाइट करते करते बाबा से नैन मुलाकात करते, खूब बढ़िया सपने लेते, ऐसा सोएंगे जो सुबह 3:15 बजे उठ भी जाए, 3:30 से पहले उठ भी जाए। बहुत अच्छे, बहुत जागृत अमृत वेला करते हैं, आज ही कराया, आज ही देखा, और पहले से प्रैक्टिस है। जैसे भाई जी बता रहे हैं कि हर सेंटर पर अमृत वेला योग संगठन में ही होता है, तो ये बहुत अच्छी आदत है सभी को। और इससे फिर बहुत से, जैसे सतीश भाई अपना अनुभव सुना रहे हैं, मुझे भी ये बताते अच्छा लगता है कि कभी अमृत वेला मिस नहीं हुआ, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे ट्रेन में, चाहे कहीं भी रहे। इसी तरह आप भी बहुत सारे ऐसी आत्माएं हैं जो फखर से ये बात कहेंगे कि जब से ज्ञान में चले नॉट ए सिंगल डे कभी भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। आप में भी बहुत आत्माएं ऐसी होंगी कहने वाली, तो इस बात को बना के रखना है हमेशा के लिए। अभी संगम युग खत्म नहीं हुआ, हमेशा के लिए इसको जारी रखना है। ओम शांति।
मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, मुलाकात हो गई है, यूं ही राह चलते चलते, मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते, मैंने कभी न सोचा खुदा दोस्त होगा मेरा, मैंने कभी न सोचा खुदा दोस्त होगा मेरा, कभी ख्याल भी न आया मेरा ख्वाब होगा पूरा, जिंदगी संवर गई है, जिंदगी संवर गई है, तुझे याद करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मुश्किल कुशा मिला तो मुश्किल की ना खबर है, खिले गुल है गुल नजर में, हंसी कितना हम सफर है, मंजिल ही मिल गई है, मंजिल ही मिल गई है, यूं ही साथ चलते चलते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते अपने लिए जो सोचा अपना न कुछ हुआ है, सबके लिए जो सोचा सबकी मिली दुआ है, लगे हाथ महकने फूलों की बरसात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते मुलाकात हो गई है, यूं ही राह चलते चलते जिंदगी संवर गई है, तुझे याद करते करते, तुझे याद करते करते।